ओम शांति। आज का जो विषय है, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो उस विषय को हम लेने से पहले, जो हम यहाँ आ रहे थे क्लास में, और एक दो बातें जो याद आई मैं पहले वो सुनाऊंगा। किसी ने कहा था, आप बाबा के बच्चे, जब आप अकेले में हो तो जैसे बाबा की याद में हो, और जब आप किसी के साथ कुछ चर्चाएं करते हो तो भगवान की बातें करते हो। और दूसरी बात जो मेरे दिल को बहुत अंदर तक टच कर दिया वो बताता हूँ। बात 7-8 साल पुरानी है। डॉक्टर श्रीमंत जी और चेन्नई के डॉक्टर मिलके एक बार ना डायबिटीज का ट्रेनिंग कराए थे कि डायबिटीज क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है, और उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, भोजन का क्या उसमें है, एक्सरसाइज का क्या है, तो मेडिसिन का क्या रोल है, इंसुलिन कैसे लगाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है, बताया गया बहुत अच्छी तरह, जिसमें हमने भी भाग लिया और हमको भी बहुत लाभ मिला। नर्सेज को ट्रेनिंग दिया था, तो उसमें एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें ये थी कि माना डायबिटीज का जो मोस्टली जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं ना, वो थोड़ा आलसी टाइप को होते, केयरलेस, जो ज्यादा ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, वो खाना को भी ज्यादा कंट्रोल करना नहीं चाहते, फिर एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, तो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता रहता है। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कराए थे कि जो पसंद की गीत हो वो गीत अपने घर में म्यूजिक बजाए, चाहे बाबा को हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे जो भी हो, फिल्म का हो, और वो गीत म्यूजिक पे आप डांस करो, कूदो, घूमो, फिरो, ऐसे शरीर को हिलाओ, तो एक्सरसाइज होगी। और डॉक्टर साहब खुद करके दिखाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। जो व्यक्ति दूसरों को ठीक करने के लिए खुद डांस कर सकता है वो कितने महान है। उसी तरह हमारे भाई सवार था डॉक्टर साहब, डॉक्टर सचिन जी, खुद तो भाई साहब इतना बिजी रहते, फिर भी मैं समझता 24 आवर मन की डांस करते रहते और दूसरे को डांस कराने की तरीका ढूंढते रहते और दूसरों को भी कराते रहते, तो वो भी हमारे, हमको लगता है कि वो भी कम नहीं है, बहुत बड़े हैं। और मुझे तो समय प्रति समय मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, तो हमारे लिए तो है ही बहुत बड़े आदर्श। अभी हम आते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो वास्तव में सिर्फ दाने दाने पे खाने वाला का नाम नहीं लिखा है, जहाँ हम सेवा करते हैं उस सेवा स्थान पे भी हमारा नाम लिखा हुआ है, जहाँ हम घूमने जाते हैं, जहाँ हम योग में बैठते हैं, जहाँ मुरली में बैठते हैं, चाहे जो भी कर्म करते हैं, उस हर कर्म में हमारा नाम जुड़ा हुआ रहता है। उसमें मुझे एक कहानी याद आता, एक भिखारी होता है जो भीख मांग कर अपना गुजारा करता है, जीवन यापन करता है, रोज भीख मांगने जाता है, तो कभी कोई देता है प्यार से, कभी नहीं भी देता है, कभी कोई डांट भी देता है, बेचारा परेशान हो जाता है अपने कार्य से, भगवान को कहते हैं, भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझ पर रहम करो, मुझे धन दो, जो हम दूसरों से मांगना न पड़े, मैं आपको भक्ति करूं, पूजा करूं, और आपके ही कार्य में अपना जीवन लगाऊं। बहुत बोल भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते रहते हैं, भगवान उनके ऊपर क्या होते हैं, तो एक दिन प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं इन्हें तो मदद करना चाहिए, और भगवान उनको मदद करना चाहता है, तो क्या करते हैं कि भगवान जो भिखारी जो रोज रास्ते से जाता है, उस रास्ते में क्या करते थे, एक दिन सोने के सिक्के और जेवर जो है ना एक पोटली में डाल के रख देते हैं। भिखारी उस रास्ते से तय करने की तैयारी करते हैं, तय करता रहता है, तो उन्हें संकल्प आता है कि रोज तो मैं इस रास्ते से आंख खोल के ही जाता हूँ, क्यों ना मुझे तो मालूम है ना इस रास्ते के, मैं आज आंख बंद करके पार करता हूँ रास्ता, कैसे कर सकता हूँ कि नहीं देखता हूँ। और वो भिखारी माना पोटली से बहुत दूर ही से आंख बंद करना शुरू करते हैं और आंख बंद में ही बेचारा रास्ता को तय कर देते हैं। वो जो सिक्के की और जेवर की जो पोटली थी उस बाजू से ही चला जाता है और उनको खबर नहीं मिलता है और पीछे वाला वो पोटली उठा लेता है। तो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था, उनके तकदीर में नहीं था, उस सिक्के के ऊपर उनका नाम नहीं था और उनको भिखारी के भिखारी ही रहना था, इसीलिए वो जो है ना ऐसे हो गया। उसी में मेरा अपना एक कहानी याद आता है। कई बार क्या होता है, कहानी तो नहीं, जो प्रैक्टिकल बातें मैं बताता हूँ। हम भोजन लिए होते हैं और फोन आता है या तो कोई बुलाने जाता है, आशीष अभी आप डिस्पेंसरी में थोड़ा जल्दी चलो, बाद में भोजन कर लेना। हम जो भोजन अभी शुरू नहीं किए हैं वो थाली दूसरों को दे देते हैं कि आप ये खा लो, हम आके दूसरा ले लेंगे खाने के लिए। हाँ ठीक है। फिर हम आते हैं, कई बार तो डिस्पेंसरी में ही काम हो जाता है, नहीं तो हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल लेके गए, आए, फिर बाद में हम भोजन किए तो हमें उस समय फील होता है कि वास्तव में ये भोजन मेरे नाम का नहीं था, वो किसी के नाम का था। तो ये तो मैं समझता हूँ मेरे ही जीवन में ऐसी बात आई है या होती है, ऐसी नहीं, हर एक की जीवन में ऐसी बातें आई होगी, वो तो आप सब अनुभव भी है ही। उसके बाद में हमें एक बात और याद आती है कि कृष्ण और सुदामा का, कृष्ण सुदामा का दोनों जो है ना बाल सखा है, और कृष्ण सुदामा जी क्या करते हैं, एक आपस में, वो तो विश्व महाराजन है और सुदामा क्या रहता है, तो भिखारी रहता है। और सुदामा की जीवन कितना दयनीय होता है वो तो शायद आप सबको पता होगा कि हाँ नहीं, ब्राह्मण भीख मांग के खाते ना, और भीख मांगने जाते हैं तो हाँ जी भीख और भिक्षा में फर्क है पता नहीं मेरे को। तो कई बार तो उनके जीवन में भी दिखाया है कि कोई देता है कोई नहीं देता है, दरवाजा भी बंद कर लेता है। और श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी होती है, रुक्मणी कहती है प्रभु आपका बाल सखा है, आपका भक्त अनन्य भक्त है, आपको उन्हें मदद करना चाहिए, आप कुछ करें। कितना मनाने पे भी रुक्मणी मानती नहीं कि नहीं ऐसे को तो मदद करना चाहिए, आप तो रहम दिल हो। और क्या करते हैं, तो श्री कृष्ण जी कहते चलो रुक्मणी आप बोलते हो तो हम उन्हें मदद करते हैं। सुदामा जी क्या करते हैं, तो भिक्षा के लिए जैसे नित्य जाते हैं वैसे जाते रहते हैं। और क्या करते हैं, तो भिक्षा के लिए गए तो पहले ही घर में उनको क्या मिलता है, तो खीर मिलता है भिक्षा के रूप में। और सुदामा जी का दिल तो बहुत बड़ा होता है कि हम अकेले कैसे खाएंगे, घर में बच्चे भी खाएंगे तो बीबी भी खाएंगे। वो खीर को लेकर सुदामा जी क्या करते हैं, तो घर आते रहते हैं। घर आते आते किसी कारण बस गिर जाते हैं सुदामा जी, और गिर जाते हैं तो जो खीर रहते हैं वो सारा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण वो खाने के लायक नहीं रहता है, और सुदामा जी खाली हाथ ही वापस घर आ जाते हैं। तो रुक्मणी को श्री कृष्ण जी बोलते हैं, देखा रुक्मणी आप बोल रहे थे मदद करो, हमने मदद किया लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। तो ऐसे कई बार होता है कि हम बाबा के बच्चे, हम ज्ञान में चलते भी रहते हैं, हमारे साथ बहुत चलते हैं, लेकिन चलते चलते क्या करते हैं, तो बाबा के हाथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। घर में जो गीता पाठशाला था, उस गीता पाठशाला से हम तीन कुमार निकले थे, और तीन कुमार एकदम रात रात भर बैठ के योग करना, सेवा करना, पूरा एकदम समर्पित जैसे दिनचर्या बनाया हुआ था हम सबका, बहुत अच्छा। फिर कुछ कारण से हम जब अपना कारोबार बंद करके जब नौकरी में गए तो हमारे साथ वो दोनों भी आ गए, और हम तीनों जाने एकदम पांडव हम जैसे बहुत अच्छा सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, नौकरी भी करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन वो तीन कुमार से अभी एक कुमार का तो शादी हो गया है और दूसरा का कोई बंधन नहीं, फिर भी ज्ञान में नहीं चलते। आखिर क्यों? क्योंकि संगम युग का सुख परमात्मा पिता से जो वर्षा लेना था, वर्षा लेने का हक और परिवार की प्यार उनके भाग्य में नहीं था। अभी नहीं, आगे हो भी सकता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था, इसलिए ऐसे होता है। चाहते हुए भी नहीं हो पाता है क्योंकि तकदीर में न होने के कारण। और जिनके तकदीर में रहता है, जिनके भाग्य भाग्य में है, वो क्या करता है, भाग्य भाग भाग के हमारे नजदीक आता है। अगर हमारे भाग्य में, हमारे तकदीर में नहीं है तो हमारे पास भाग भाग के जितना पकड़ने के बाद भी कुछ दूर चला जाता है। ऐसे ही राजा जनक के जीवन में भी बताते हैं। राजा जनक तो मालूम है ना कि मिथिला नगरी के राजा थे, जो वर्तमान समय जनकपुर के नाम से जाना जाते हैं। राजा जनक जो मुरली में भी बाबा याद करते हैं, जो जनकपुर नेपाल में है। तो राजा जनक के जीवन में भी दिखाते हैं कि राजा जनक जी क्या थे, तो बहुत बड़े आदर्श राजा थे। और एक दिन सोए नींद में थे, सोए थे तो एक स्वप्न देखा उन्होंने। क्या स्वप्न देखा, कि मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, बहुत भिखारी हो गया हूँ, मुझे भीख मांगने जाना पड़ा, और भीख मांगने जाते उन्हें भीख भी नहीं मिलता है, उन्हें भूख बहुत जोर से लगी हुई है, क्या करे नहीं करे, बेचारा परेशान हो जाता है, इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, उधर जाता है, इधर जाता, उनको खाने को कहीं नहीं मिलता है। फिर इधर जाता, उधर जाता, ढूंढने के बाद में एक जगह क्या होता है, तो भोजन बटता रहता है, और उस भोजन बटते हुए देख के बहुत खुश हो जाते हैं। भाग भाग के जाता है राजा जनक जी और लाइन में खड़ा हो जाते हैं। लाइन में खड़ा होने के बाद में जब उनकी बारी आती है, तब तक भोजन समाप्त हो गया रहता है, फिर भी भोजन परोसने वाले बर्तन से एक कना निकाल के देते उनको, और उस एक कना को लेके भी बहुत खुश हो जाते हैं, और दोनों हाथ में कना को लेके भगवान को धन्यवाद करते कि भगवान आपने कम से कम इतना तो दिया। और जैसे ही भगवान को धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से चीलो कना को उठा के ले जाता है। अब हुई मुश्किल, राजा जनक परेशान हो जाता है, अब क्या करे, कैसा हालत हो गया मेरा। इतने में उनका नींद खुलता है और राजा जनक फिर अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु को बोलते हैं कि सत्य क्या है, सत्य जो अभी मैं हूँ राजा वो है कि जो स्वप्न में था वो सत्य है। गुरु ने क्या जवाब दिया होगा, तो सत्य क्या है, सत्य आप विदेही हो, सत्य न ये है न सत्य वो था, न स्वप्न सत्य था न ये सत्य, सत्य तो आप विदेही आत्मा हो। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में राजा जनक के नाम एक कना दाना भी नहीं था। ऐसे ही बाहर के आया खा गया, घर के गाए गीत। इस भूमि के ऊपर सकार प्रजापिता ब्रह्मा 19 साल तक पाठ बजाए, मातेश्वरी जगदम्मा सरस्वती दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली, सारे विश्व को धन देने वाली लक्ष्मी, संतुष्टता के मणि माँ संतोषी ने यहाँ पे तपस्या किया है, लेकिन यहाँ के रहने वाले माउंट के लोग कितने ज्ञान में चलते हैं, एक भी नहीं चलते। जो भी आबू निवासी हो कहाँ के, बाहर से आए हुए है कि नहीं, जो बाहर से आते हैं सर्विस करने के लिए सीआरपीएफ में, पुलिस में, जो भी फोर्स में, वो कोर्स करते, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते, लेकिन यहाँ के लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ के संगम का सुख अविनाशी पिता के 21 जन्म का वर्षा उनके भाग्य में नहीं है। इसी वजह से हम, हमारी संस्था की ओर से हमारे दादियां कितना मेहनत करते, समय पे आम देना, कम्बल देना, कोई बीमार होते तो हॉस्पिटल में फ्री इलाज कराना, है ना, गाड़िया का व्यवस्था करना, इतना कुछ करते हैं, फिर भी उनका भाग्य उतना तक ही है। इसीलिए बात सीध होती है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। उसके बाद में एक और भी मुझे कहानी याद आता, एक सेठ जी जो महाकंजूस होते हैं, उनके पास एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जाते। अभी भिक्षा मैंने बोल दिया है, हाँ, भिखारी भिक्षा मतलब ब्राह्मण भिक्षा। अच्छा, तो आप बाद में बताएंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो भीख मांगने के लिए जाता है तो महाकंजूस रहते वो सेठ जी, तो नहीं देता है, बोलता है आपको देके फायदा क्या। तो बोलता है अरे दान करने से तो पुण्य होता है, देना चाहिए, वो घटता नहीं है। तो सेठ जी बोलता है कि आपको पता है कितना मेहनत से इकट्ठा किया है, बूंद बूंद से तलाव भरा है, अब आपको मैं दे दूं तो बढ़ेगा कैसे। तो बोलता है कि अरे सेठ जी अगर मेरे भाग्य में अगर होगा तो आपको रोकने से भी नहीं रुकेगा और हम लेके ही छोड़ेंगे। तो बोलते है अच्छा लेके देखो, बताओ मैं कैसे लेता हूँ। उसी समय चिड़िया आस पास दाना चुगती रहती है, उनके आगे दो चार दाना है। वो सेठ जी वो दाना, चिड़िया के आगे वाला दाना वो ले लेते और मुंह में डाल लेते और बात भी करते कि देखो अब ये चिड़िया का दाना मैं खा लिया हूँ, कैसे उनके भाग्य का है बताओ मेरे को। और बात करते रहते और खाते रहते, बात करते रहेंगे और खाते रहेंगे तो क्या होगा, गला में अटकेगा और खांसी होगा। खांस खांस के वो जो दाना लिया था चिड़िया वाला, वो उनको उल्टी हो गया। और उल्टी होकर जब मुंह सफाई के लिए कहीं और गया तो क्या हो गया, चिड़िया वो दाना खा लिया। फिर तो कहा भिखारी ने, कहा कि देखा सेठ जी, खाने वालों दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो ऐसे करते वो मना भिखारी संतुष्ट हो गया कि चलो हमें नहीं दिया, लेकिन वास्तव में ये सीधे। और सेठ जी को भी रियलाइज हुआ कि वास्तव में कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन सेठ जी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी क्योंकि भिखारी के नाम पे उनके घर का दाना नहीं था। तो ऐसे कई बार होता है कि वास्तव में यज्ञ में देने वाले जो देते हैं, पैसा लगाते हैं, अन्न लगाते हैं, उपजाता कोई और है, लाता कोई और है, बनाता कोई और है और खाता कोई और है कि नहीं। तो उपजाता कोई और खाता की और, तो देखो उपजाने वाला का नाम उधर है तो खाने वाला का नाम इधर है, और बीच में कौन है तो बाबा है। तो बाबा के कार्य में, बाबा के यज्ञ में जो लगाता है और हम खाते हैं, वो हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कितना मेहनत करके उन्होंने अपना धन लगाया, कितना मेहनत करके उगाया और कितना मेहनत करके यहाँ भेजा। अगर हम वेस्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, या तो हम भोजन करके सेवा में अपने समय को सफल नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी बोझ पड़ जाती है। किसी ने मेरे को बहुत अच्छा बताया था कि भाग्य जो है बरसात की पानी की तरह है, जो कभी कभी मिलता है। भाग्य जो है बरसात पानी के समान है, जो कभी कभी मिलता है। कुएं का पानी में खींचना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा मिलता रहता है। अगर हमें बरसात की पानी में स्नान करना है तो बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, लेकिन बरसात की पानी की भरोसा करके अगर हम हमेशा रहे तो हम हमेशा स्नान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुएं के पानी को खींचना पड़ेगा, अर्थात कुआं नहीं खोदना पड़ेगा, कुआं तो खोदा हुआ है, कुएं से पानी खींच के स्नान करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ जी, नहीं नीचे से ही पानी आता है। हाँ, पहले हमारे उधर जो नल नहीं था ना, तो प्याज वगैरह उगाने के लिए मिट्टी को खोद के पानी निकालते थे, बहुत गहरा, और वो पानी में बहुत अच्छा दिखता था, पीने में तो नहीं, लेकिन वो तो पानी, कुएं का पानी से ही हमें भरोसा करना, अर्थात पुरुषार्थ जो है ना पहले है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हमें भाग्य में मिल गया है तो क्या होगा? हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हमें भाग्य में मिला है, बहुत अच्छा पोस्ट मिला है कोई ऑफिसर्स को, भाग्य से मिल गया, उतना मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन वो पोस्ट को संभालने के लिए क्या करना है, उनको कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बाबा ने हमें यहाँ तक भेजा, हम यहाँ पर आ गए, रहने लग गए, लेकिन हम सेवा नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जिस लक्ष्य लेके लक्ष्य लेकर आए हो उस लक्ष्य को सामने नहीं रखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? ये दाना हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दाना दान किया हुआ दाना है। हम जब हम समर्पित नहीं थे तो उस समय एक भाई बोला था कि ब्रह्मा कुमारी का जो है ना अन्न हजम करना कोई मासी का घर नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आया ये बात, लेकिन वास्तव में एक बड़ी गुही गति है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई अपना कमाई करके लाते नहीं है, क्योंकि हम दान किया हुआ खाते हैं, तो हमें मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, 200 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ ही नहीं सेवा भी करनी पड़ेगी, सेवा भी नहीं सेवा दिल जान सिख प्रेम और भावना से करनी पड़ेगी। आज भी बाबा ने बोला, तो बीच में बोलना था, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, तो हमने गीत और डांस की बात की थी, तो गीत और डांस करने से अगर कहीं नहीं कर सको तो बाथरूम में तो कर ही सकते हैं, रूम में तो गीत गुनगुना ही सकते हैं, तो नहीं नहीं तो गीत तो गा ही सकते ना, हाँ तो गीत तो बहुत सारे लोग बाथरूम में गाते ही रहते हैं, हमारे भी उधर लाइट हाउस में एक दो गाते रहते, तो क्या होता है इनके डिप्रेशन से हम बाहर आ जाते हैं। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, फिजिकल गीत भी गाते, मतलब बाहर की कोई भी गीत गाते हैं, तो डिप्रेशन से निकलने का चांस है, और हमारे में उमंग उत्साह आता है, जो कि हमें जो हमने पहले बताया था ना कि डायबिटिक वाला जो भी है पेशेंट, वो उनको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लास्ट में मैं आप सबको एक गीत सुनाऊंगा, मैं गा के नहीं सुनाऊंगा आप सबको, नहीं गा के नहीं सुनाएंगे, वो जो वो जो है ना, वो समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तो वो गीत हम आपको सुनाएंगे।
Thank you.
ओम शांति। हर एक के जीवन में बातें परिस्थिति तो आती ही है, और जब बातें और परिस्थिति आते हैं तो हम दूसरी की ओर उंगली उठाते कि इनके वजह से ऐसा हो गया, इनके वजह से मुझे असफलता मिली, ये बातें, ये परिस्थितियां आया। हम बाबा के बच्चे हैं और हम समझते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छे फल मिलता है, तो हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही मिलेगा। भले अभी हमें प्रेजेंट में हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, कोई नुकसान लग रहा है, लेकिन वो नुकसान में भी अच्छाई समाई हुई है। इसीलिए हमें किसी दोषारोपण करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, दोषारोपण करना नहीं है। और लास्ट में मैं दो लाइन सुना के जाता हूँ, तो ये जो आज का शीर्षक था, जो पॉइंट था, उससे अलग है। किसी ने बहुत अच्छा बताया था कि जब आप खुश रहते हो तो जैसे परमात्मा की प्रार्थना करते हो, जब आप औरों को खुश करते हो, परमात्मा आपकी प्रार्थना करते हैं। ओम शांति।